हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 5, 6 एंड 7। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगणरघुनाथ वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणललिता श्रीविशाखन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपीककांता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचनं गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, श्लोक नंबर 5। कृपया मेरे साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त
स्वाकलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः
शब्दात् अन्तकाले अर्थात् मृत्यु के समय च यानी भी माम एव माम यानी भगवान कहते हैं मुझको और एव माना निश्चित रूप से सिर्फ मुझको अंतकाले च माम एव जो अंत समय में केवल और केवल मुझको मुझको क्या करते हैं स्मरण करते हैं स्मरण का मतलब होता है याद करते हैं मुझे स्मरण करते हुए क्या करते हैं मुक्त्वा कलेवरम मुक्त्वा मतलब छोड़ते हैं त्यागते हैं कलेवर यानी इस शरीर को यानी कि अंत समय में जब आत्मा शरीर को छोड़ रही होती है यदि वो केवल मुझे स्मरण कर रहा होता है आत्मा तो यह प्रयाति समद्भावम यह माना ये जो प्रयाति यानी जाता है सह वो मद्भावम यानी मेरे स्वभाव को अब अगर अंत समय में उसने मुझे स्मरण किया तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त करता है तो यहाँ पर हो सकता है अर्जुन के मन में कुछ डाउट हो कि क्या और कुछ भी वो प्राप्त कर सकता है या कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत सारे अपराध किए हो फिर भी तफाक से यदि आपको याद कर लिया तो क्या फिर वो प्राप्त करेगा तो भगवान कहते हैं याति नात्यत्र संशया याति मतलब प्राप्त करता है न अत्र मतलब नहीं है नास्ति अत्र इसमें कुछ भी अस्ति मना है अत्र मना यहाँ संशय यानी संदेह मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मृत्यु के समय जब कोई आत्मा इस शरीर को छोड़ रहा होता है यदि उस समय उसने मेरा स्मरण कर दिया तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है इसमें कोई संशय नहीं कोई डाउट नहीं अनुवाद देखिए और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शाई गई है जो व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत ही परमेश्वर के दिव्य स्वभाव अर्थात मद स्वभाव भगवान ने कहा यह प्रयाति समद्भाव तो यदि कोई भगवान को स्मरण करते हुए शरीर को त्यागे तब भगवान ने क्या कहा वो निश्चित रूप से मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध यानी सबसे ज्यादा प्योर है शुद्ध है अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध हो जाता है जो भगवान को स्मरण करता है जो भगवान की कथाओं का श्रवण करता है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है भगवान की सेवा करता है तो श्री प्रभुपाद जी कहते क्योंकि यह भक्ति बहुत शुद्ध है इसलिए जो करता है ऐसा वो भी शुद्ध हो जाता है और स्मरण शब्द जो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण कहा है पहली लाइन अंतकाले जमामेव उसके दूसरे पार्ट में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तो स्मरण के विषय में श्री प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीव के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का स्मरण करना चाहिए, जप करना है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने एक फैक्ट बताया है, एक वास्तविकता बताई है कि भगवान ने कह दिया अंत काले चमाम, खाली अंत समय में भी यदि वो मेरा स्मरण करता है, जिस समय वो अपने कलेवर को त्यागता है, तो फिर वो मुझे प्राप्त करेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा जीवन अशुद्ध कार्य करते रहो, तमोगुण में जीते रहो और अंत समय में तुमसे भगवान का स्मरण हो सके, ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का स्मरण अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता, जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया है उसी से हो सकता है। जो भक्ति करता है, श्रवण करता है, जप करता है, भगवान की सेवा करता है, प्रसादम खाता है, केवल उसी के लिए या उसी को यह अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो भगवान का अंत समय में स्मरण कर सके। ऐसा नहीं कर सकते हम कि बस पूरी जिंदगी जीते रहें जानवरों की तरह और कहें अंत में तो कहा कृष्ण ने 8.5 में अंत में याद करना है, तो अंत में भगवान को याद कर लेंगे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसा किया तो तुम्हें भगवान याद ही नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए शुद्धिकरण आवश्यक है। भगवान शुद्धाति शुद्ध है, तो शुद्ध जी यदि शुद्ध तरीके से जियोगे तभी तुम्हें भगवान अंत में याद आएंगे। अशुद्ध जीव को तो भगवान का स्मरण हो ही नहीं सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहनशु होना चाहिए, तरोर इव सहशोण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें उत्साह देते हुए कहते हैं कि ऐसा मत समझना कि तुम भक्ति करोगे तो सारे रास्ते खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। भगवान की भक्ति कर रहा है, चलो ठीक है, इसको भक्ति करने तो कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी, ये आराम से बैठ के जप करे, अपना कथा श्रवण करे और लेक्चर श्रवण करके फ्लावर्स सेंड करे और विग्रह सेवा करे, इसको जो भी करना, ऐसा नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे व्यवधानों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आपको फेस करना पड़ेगा और ये सारे टेस्ट हैं, समझो जैसे हमारे टेस्ट होते हैं ना, तो ये भगवान जो है वो हमारा टेस्ट लेता है कि कितना हद तक हम परिपक्व हो रहे हैं, कितना भगवान की भक्ति और मंत्र में हमारा ध्यान लगता है। ये जो भौतिक कभी कभी बाधाएं आती हैं, कोई ऐसी चीजें आ जाती है जिसकी वजह से हमें भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता या ऐसा होता है दूसरी चीजें ज्यादा हावी हो जाती हैं, तो ये हमारा टेस्ट होता है, तो हमें उसमें फेल नहीं होना है। बल्कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि त्रणादपि सुनी चाहिए ना तरोरपि सही श्रोणा, कि उसको राह में गिरे हुए तिनके से भी अधिक विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशु होना चाहिए। तो जो जो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, हमें उन सब कठिनाइयों को सहन करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि जिससे जीवन के अंत समय में कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद की जय हो। आगे श्लोक नंबर 6 देखिए, ये तीनों श्लोक एक साथ एक ही लय में है, तो इनको हम पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक नंबर 6 में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैतिकौन्तेय
सदा तद् भाव भावितः यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् यः प्रयाति समर्थाफम्। क्षमा यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तत् भावभावितः यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तत् भावभावितः। शब्दात् यम यम वापि स्मरण भावम्। यम यम माने जिस जिसको, व अपि यानी किसी भी, स्मरण यानी स्मरण करते हुए, भावम यानी स्वभाव को। अब यहाँ पहले भगवान ने एक रूल बताया कि अंतकाले यदि आप मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। अब भगवान बता रहे ऐसा है, वास्तव जनरल रूल क्या है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंत समय जब आप इस कलेवर को छोड़ रहे हो, जब इस शरीर को छोड़ रहे हो, आत्मा को बोल रहे हैं, तो उस समय आप किसी को भी याद कर रहे हो। यम यम वापि स्मरण, जिस जिसको याद कर रहे हो, जिस जिसका स्मरण कर रहे हो, तम तमे वायति कौन्तेय, तम यानी तम तम यानी वैसे ही, एव एव माने निश्चय ही। देखो इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अंत समय में यदि डॉग को याद करोगे तो डॉग का जन्म मिलेगा, केट को याद करोगे केट का जन्म मिलेगा। अगर किसी भी भौतिक वस्तु को याद करोगे तो उसी से रिलेटेड आपको दूसरा जन्म मिलेगा। यानी तम तमे वायति कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। सदा तद् भाव भाविता यानी सदैव तद् यानी उस भाव भाव को भाविता यानी स्मरण करता हुआ। अनुवाद देखिए, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसा सदा तद् भाव भाविता, वैसा ही स्वरूप उसको प्राप्त होगा जैसा के यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय या अंत समय जब आप कलेवर को छोड़ते हो, जिस जिस भाव को याद करते हो वही भाव आपको प्राप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है कि मृत्यु के समय एक चांस होता है आपके पास कि आप अपना स्वभाव बदल सकते हो, आप अपना जीवन जो है उसको परिवर्तित कर सकते हो। विधि यहाँ पर बताई गई है क्या कि यम यम वापि स्मरण, स्मरण की विधि। स्मरण की विधि है, वो प्रोसेस कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन यह रूल क्या है कि आप जिसको भी स्मरण करोगे वैसा ही आपको दूसरा शरीर मिलेगा। तो जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने चेतावनी दी है कि भूल जाओ कि यदि आप अंत समय में कुछ और सोचकर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो नहीं। अंत समय में माम एव, भगवान ने कहा सिर्फ मुझे याद करेगा वही मुझे प्राप्त करेगा। 100% हमारा स्मरण जब कृष्ण तक ही होगा। अगर उसमें 1% भी चूक हो गई तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ आगे वो तो आगे बताएंगे। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उससे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होगी। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, अभी मरना सिखाएंगे यहाँ श्री प्रभुपाद जी के किस प्रकार से आप अपने मन को कंट्रोल करके कैसे मरो। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, महापुरुष होते हुए भी महाराजा भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों का स्मरण की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। महाराजा भरत की आप सबको स्टोरी पता है कि वो सब कुछ छोड़ जाके एक छत्र राजा अपने समस्त राज्य को छोड़कर जंगल में आ गया और वहां पर हिरण के अंदर उनकी आसक्ति हो गई और देह त्याग के समय भी उन्हें क्योंकि हिरण का ही स्मरण हो रहा था, तो भले ही उन्होंने बहुत बहुत पुण्य किए होंगे, दान दिए थे, यज्ञ किए, तपस्या की, लेकिन अंत समय में जिसको याद किया यानी हिरण को याद किया, तो भले ही हिरण के शरीर में उसको कुछ जाया नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति जाया हो जाएगी, भक्ति जाया नहीं हुई, लेकिन अंत समय में एग्जाम है आपका और उस एग्जाम में आप तभी पास हो सकते हो जब उस समय आपको एव माम एव केवल कृष्ण की याद आए। अगर कुछ और याद आया तो फिर गड़बड़ हो सकती है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, इसको हमें समझने का प्रयास करना। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्संदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों की को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन बनता है। ऐसा नहीं है कि आप अंत समय में अपनी इच्छा से कुछ भी सोच सकते हो, नहीं, पूरा जीवन आपने जिस तरह के विचार संचित किए हैं मृत्यु के समय वही विचार जो है वो आपको प्रभावित करते हैं। इस जीवन से जो हमारा जीवन है उससे हम किस तरह से जी रहे हैं, कैसी विचारधारा रख रहे हैं, कैसे लोग के साथ रह रहे हैं, किसके साथ संबंध है, किसके साथ अट्रैक्शन है, किसके साथ मोह है, किसके साथ आसक्ति है, वो सारा का सारा मिलाकर हमारा अगला जीवन बनता है। ऐसे नहीं है कि मृत्यु के समय आप कुछ भी सोचते हो, नहीं, मृत्यु के समय आपके मन में वही बात आती है जो आपने पूरे जीवन जिस बात को सोचा है। तो अगर कोई इस जीवन में सत्वगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बन पड़े। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, आप अगर चाहते हो कि अंत समय में कृष्ण आपको याद आए तो फिर उसके लिए क्या करना है, निरंतर कृष्ण का यदि कोई चिंतन करता है तो पॉसिबल है कि आए अंत में आपको याद, वरना अंत समय में तो इतना कष्ट होता है कि भगवान का स्मरण होता नहीं है, बल्कि वो आ ओ ए करते रहते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी तो भगवान को याद नहीं किया और अंत समय भगवान याद आते नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। किससे? अगर यदि पूरा जीवन भगवान का चिंतन किया है तो मृत्यु के समय आपको कृष्ण का स्वभाव प्राप्त करने के लिए सहायता प्राप्त होगी और कृष्ण का स्मरण आएगा। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य या आध्यात्मिक हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, पहले पूरी तरह से इस भौतिक जगत में पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लीन होना है, तभी हमें अगला शरीर जो है आध्यात्मिक मिलेगा। अभी ये शरीर भौतिक है, वास्तव में हम आत्मा हैं, हमारा यह शरीर जो है वो हमारे लिए नहीं है, ये तो कर्मों के अनुसार कर्म की श्रृंखला को खत्म करने के लिए और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए एक साधन है। तो यदि इस शरीर में रहकर हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं, कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो फिर क्या होगा, अगला शरीर आध्यात्मिक मिलेगा, भौतिक नहीं। श्री रूपा जी बोलते हैं, अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि अंत समय में हम चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले, भौतिक शरीर ना मिले, हम इस जीवन के एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, ताकि हम इस भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सके। और कैसे करना? निरंतर करना, जैसे हमने पहले पढ़ा, जो निरंतर करता रहे, जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करेगा, उसी के लिए पॉसिबल है कि वो अंत समय में भगवान के पवित्र नाम का जप करे। अगर पूरी जिंदगी नहीं किया तो आप नहीं कर सकोगे। आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 7 में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। शब्दात् तस्मात्, तस्मात् मतलब अतेव या इसलिए, क्योंकि मृत्यु के समय आप जिस चीज को याद करोगे वही आपको दूसरा जन्म ऐसा ही मिलेगा, और मृत्यु के समय वही याद आएगा जिसको आप पूरा जीवन याद करोगे। तो भगवान कहते हैं तस्मात्, इसलिए, इसलिए क्या करो? सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु यानी समस्त, कालेषु यानी कालों में, सारा समय क्या करो? माम अनुस्मरण, माम यानी मुझको, अनुस्मरण माना स्मरण करते रहो, और साथ में सारे काम काज छोड़ दो। ऐसा नहीं कहा भगवान ने, कहा माम अनुस्मर युद्ध, साथ में आपको युद्ध भी करना है। ऐसा नहीं कि सारे काम का छोड़ के बस खाली अब मेरा स्मरण करना शुरू कर दो, नहीं। आप इस संसार में आए हो, आपके जो जो कर्तव्य है उनका पालन करो, लेकिन वो पालन कब करो? साथ साथ में तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, आपको मेरा स्मरण भी करना है, और साथ में क्या करना है? मई अर्पित बनो बुद्धि, मई माने मुझको, अर्पित माने शरणागत होकर, मन और बुद्धि, ये जो मन ये लगाम है और बुद्धि क्या है? सारथी है। इन दोनों को भगवान कहते हैं मुझे समर्पित कर दो। मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव, माम यानी मुझको, एव माने निश्चय ही, मामे वैश्यस्य संशय, वैश्यस्य का मतलब होता है प्राप्त होगा, असंशय का मतलब होता है निसंदेह। यदि आप ऐसे करते हो, कैसे करते हो? सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर एक समय में मुझे याद करते हो, प्लस युद्ध और साथ में अपने कर्तव्यों को पूरा करते हो, अपने मन और बुद्धि को मुझे छोड़ देते हो। ऐसा नहीं सोचते कि मैं कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे ये करना नहीं। अपने कर्तव्य पूरे करो, कर्तव्यों में आसक्ति या कर्तव्यों के जो रिजल्ट है उसमें कोई आसक्ति नहीं रखनी है। बस क्या करना है? युद्ध और साथ में मन और बुद्धि, मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि भगवान को स्मरण समर्पित कर देना है। और भगवान कहते हैं मामे वैश्यस्य संशय, तो निश्चित रूप से आप मुझे प्राप्त करोगे। अनुवाद देखिए, हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। आप इसे देखिए, हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया है। अर्जुन को मोह प्राप्त हो गया है भगवान, क्योंकि हम सबको इस मोहमय जगत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन के द्वारा हमें ये बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। हम जैसे भौतिक लोग जो भौतिक कार्यों में सदैव जकड़े हुए होते हैं, उनको भगवान ये आदेश दे रहे हैं कि आपको अपने कर्मों के अंदर आसक्त नहीं होना है। बस अपने कर्म करने हैं, लेकिन क्या करना साथ में? तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, मुझे याद करते रहना है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी, इससे मनुष्य भौतिक कर्म से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाया है कि यदि कोई अपने सारे कार्य करते हुए साथ साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, तो जप करने से क्या होगा? हमारे हृदय के समस्त अपराध नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि कृष्ण में प्रवृत्त हो जाएगी। बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा और इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? भगवान का पवित्र नाम जो है वो भगवान के लोक में या कृष्ण नाम में हमें ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत हमारा पूरा जीवन इन श्लोकों पर निर्भर करता है, हमारा अगला जीवन इन श्लोकों पर निर्भर करता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय भगवान यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने 7.30 में अर्जुन को कही थी। भगवान ने कहा, प्रयाण काले पिचत माम ते विदुर युक्त चेतसा, यानी कि जो सदैव युक्त चेतसा, यानी जिस जिसका मन मुझ में लगा रहता है, वो अंत समय में मुझे याद कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन ने पूछा श्लोक नंबर 8.2 में कि प्रयाण काले च कथम येयोसी नियतात्म भी, कि जो नियत आत्म भी होते हैं, यानी कि आत्म संयमी होते हैं, जो सदैव आपका स्मरण करते हैं, वो अंत समय में आपको कैसे याद कर सकते हैं? और अंत समय में याद किसे करते हैं और आपको प्राप्त कैसे करते हैं, उसको थोड़ा आप डिटेल से बताओ, मुझे समझ में नहीं आया है। अब इसके अतिरिक्त जो भगवान ने अर्जुन ने दूसरे प्रश्न किए थे, उनके उत्तर भगवान ने श्लोक नंबर 4 तक दे दिया। आज इस अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, प्रयाण काले च कथम येयोसी नियतात्म भी, वो व्यक्ति जो आत्म संयमी होता है, नियतात्म भी यानी अपने आप को तैयार करता है, प्रिपेयर करता है अंतिम एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको कैसे प्राप्त करता है, वो तो जरा सही तरह से बताओ। तो अब भगवान इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। इसके लिए भगवान ने सबसे पहले एक जनरल बात बताई श्लोक नंबर 5 में। क्या कहा? अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समस्थावम् याति नास्यत्र संशयः। कि अंत समय में माम एव, जो केवल मुझे स्मरण करता है, और कब स्मरण करता है, मुक्त्वा कलेवरम, जब वो इस शरीर को त्याग रहा होता है। ये पर्टिकुलर जगह समय बताया भगवान ने। अब यहाँ भगवान ने मृत्यु शब्द नहीं कहा है, भगवान ने क्या कहा है, सिमरन मुक्त्वा कलेवरम, यानी ये कलेवर को छोड़ता है, कलेवर को शरीर, कलेवर यानी शरीर, शरीर को त्याग करता है। तो भगवान यहाँ पर एक बात को, ये बात भी क्लियर कर रहे हैं कि यह शरीर आप नहीं हो, आपको इस शरीर को त्याग के जाना है। सब जानते हैं, ये देखो कितना जनरल बात है, हर किसी को पता है शरीर यहीं रह जाता, आत्मा आगे चले जाती है। शरीर को तो जला देते हैं, शरीर में नहीं हो सकता, तो शरीर तो किसी के साथ नहीं जाता है। इसे भगवान कहते हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जब वो इस शरीर को त्यागता है तो इस बात को भी भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, इस बेकार के हाड़ मास के पिंड को तो तुम छोड़कर जाओगे, लेकिन उस समय स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर आप स्मरण कर दो, मेरा स्मरण कर लोगे तो मेरे पास आओगे। एक जनरल रूल बताया कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम किसी का भी स्मरण करो और मेरी प्राप्ति करो, नहीं। अंतकाले च माम एव, यदि केवल मेरा स्मरण करोगे तो फिर आप मुझे प्राप्त करोगे। और भगवान ने आगे कहा यम यम वापी स्मरण भावम, यहाँ पर भगवान एक जनरल रूल बता रहे हैं कि जिस जिस का स्मरण करोगे वे सयम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वायति कौन्तेय, अंत समय में जिस जिस भाव को स्मरण करोगे वैसा वैसा तुम स्वभाव प्राप्त करोगे। अंतमति सो गति, अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि अंत में किसी का स्मरण आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि अंत में किसका स्मरण खुद ब खुद आ जाएगा। तो भगवान एक नेचुरल बात अगले वाले श्लोक में से, श्लोक नंबर 7 में बता रहे हैं कि जिसका स्मरण करने का अभ्यास अभी से है उसी को आप अंत समय में याद कर सकोगे, यानी कि जिसको आपको अंत समय में याद करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि अंत में पास होने का अभ्यास अभी से स्टार्ट करना है। फिर भगवान का ये महावाक्य है श्लोक नंबर 7 में जो भगवान ने बताया है, बहुत बड़ा महावाक्य है ये, सबसे अहम बात है। भगवान ने क्या कहा, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, सबसे पहले भगवान ने ये नहीं कहा तस्मात सर्वेषु कालेषु युद्धच देन माम अनुस्मर, नहीं, पहले भगवान ने कहा तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। पहली बात ये है कि आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आप कैसे कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो आप जो भी कर रहे हो, अब संसार में हम आए हैं तो कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, तो कर्म तो करना है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवान बता रहे हैं सर्वेषु कालेषु, हर समय माम अनुस्मरा, मुझे याद करना, यानी हथ कारमे अयमन यारमे, सारा जो हाथ से हम कार्य करते रहे और हृदय से केवल भगवान को स्मरण। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी बता दूं मैं आपको, भगवान ने यहाँ पर स्मरण नहीं कहा है, अनुस्मरण कहा। ये अनुस्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं, परंतु अनुस्मरण शब्द यहाँ भगवान ने उच्चारण किया है, और अनु का मतलब होता है जो पहले कर चुके हैं उनका अनुकरण करना, यानी जैसे पहले परंपरा से होता है। संसार में भगवत प्राप्ति करने के लिए पहले से ही कुछ रास्ते बताए गए हैं, पहले से ही कुछ तरीके बताए गए हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए भगवान को स्मरण करना है। अपनी मति से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं कि आप कोई भी मंत्र उठा के कोई भी तरीके से आप उसको जप करना शुरू कर दो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। भगवान ने कहा तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अनुस्मरा यानी मुझे अनुस्मरण करना है, जैसे जैसे पहले शुद्ध भक्तों ने किया है उसका अनुकरण करते हुए, यानी संप्रदाय यानी परंपरा से हमको शिक्षा लेनी है। और शास्त्र कहता है संप्रदाय विहीना ते मंत्रास निष्फला मता कहते कि जो मंत्र आप संप्रदाय से नहीं लेकर आए हो, किसी संप्रदाय के बगैर कोई मंत्र यदि आप उच्चारण करते हो से निष्फला, वो निष्फल है, यानी कि उससे आपको कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो उससे आपको कभी भी रिजल्ट अच्छा प्राप्त नहीं होगा। मतलब इसका क्या है कि जो सिलेबस में है ही नहीं, यदि आप उसकी बहुत अच्छी तरह से भी तैयारी कर लोगे, लेकिन यदि क्लास का नहीं है, वो उस बुक का नहीं है, उस बोर्ड का नहीं है जिसका आपको एग्जाम देना है, तो फिर आपने भले कितना भी याद कर लिया हो, उस स्मरण करने का, उस याद करने का आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो भगवान ने कहा अनुस्मरा, यानी कि आपको जो पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं उनके पीछे पीछे चलना है। उनके भगवान ने पहले भी बताया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि ठीक है अभी तुम्हें पता चल गया, जाओ भक्ति करो, जैसी मर्जी आए करो, किसी को फॉलो करने की क्या जरूरत है। नहीं, भगवान ने कहा जाओ प्रणिपात करो, शरणागति प्राप्त करो और उनकी सेवा करो, जो तत्वदर्शी है वही तुम्हें समझाएंगे कि वास्तव में भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका है। तो उनके आदेश अनुसार आपको कार्य करना है। इसी बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण। ये बहुत बड़ा आज के समाज में ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि हर एक व्यक्ति अपना नया पंथ खोल रहा है, हर किसी को यही समझ में आ रहा है कि मैं सही हूँ। कोई भी आज जितने भी चलने वाले पंथ हैं वो 400 या 500 साल से पहले स्टार्ट नहीं हुए। वास्तविक परंपरा ये नहीं होती है, वास्तविक परंपरा तो वो होती है जो कृष्ण से शुरू होती है। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने वेद दिया। इस तरह से जो कृष्ण से परंपरा चलती है ना, उसको कहते हैं अनुस्मरण, उसको कहते हैं संप्रदाय। तो आज जैसे जो भी यहाँ पर कोई कथा करता है तो वो जिस आसन पे बैठता है उसे कहा जाता है व्यास आसन। व्यास यानी वेद व्यास जी का आसन है ये, और उस आसन पर बैठकर वो कोई भी ऐसी बात कह ही नहीं सकता जो कि वेद व्यास ने लिखी नहीं है। वो केवल उसी के अनुसार बोलेगा, वो केवल वेद व्यास जी के वाक्य को बोलेगा। अगर वो वेद व्यास जी के उसूलों के अनुसार या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं बता रहा है, फिर तो वो किताब लाया ही नहीं है जिससे आपको एग्जामिनेशन में पास करा सके। वो अपनी ही बनाई हुई बात आपको बता रहा है। तो इसको तो जो ऐसे शिष्य हैं जो इसकी बात को अनुसरण कर रहे हैं, इसकी बात को समझ रहे हैं, यानी कि अब ये नहीं देखते कि संप्रदाय कहाँ से आ रही है, बस इसने मुझे बोला था, इसके गुरु ने इसको बोला, आगे पीढ़ियों का कुछ पता नहीं। इस तरह से यदि आप कर रहे हो तो फिर आप एग्जामिनेशन में पास होने की बात तो दूर रही, इस एग्जामिनेशन में बैठने तक नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ आपको कह दिया जाएगा चलो जाओ यहाँ से, पहले वेद व्यास जी के बनाए हुए सिलेबस से तैयारी करके आओ। जो वेद व्यास जी ने सिलेबस बनाया है, क्या बनाया है, सवय पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षदे अहितु किया प्रतिहिता ययात्मा सुप्रसीदते। कि यदि इस आत्मा को प्रसन्न करना है, आत्मा को उसका लक्ष्य प्रदान करना है, तो आपका वास्तविक गोल क्या है, यतुर भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त उनके पवित्र नाम का जप किए बगैर, उनके पवित्र कथाओं का श्रवण किए बिना आप कभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी भी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम सबको भी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है जब तक पास नहीं हो जाते। पास होने का क्या मतलब होता है, पास यानी कि इस जगह से पास हो जाए। अब ये जगह है भौतिक जगत है, उसको क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत तक नहीं जब तक चले जाते तब तक समझो हम पास नहीं हुए, तभी तो भौतिक जगत में रह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा है, और इसमें किस किस तरह से पास हुआ जाता है, सक्सेस कैसे मिलती है, ये हमें भगवान ये चैप्टर नंबर 8 में बताते हैं। अब जैसे परीक्षा होती है इस संसार में, भौतिक परीक्षा से हम कंपेयर करके देखेंगे तो परीक्षा में समय बहुत कम होता है, यानी कि एक साल तक आपको पढ़ाया जाता है, और एग्जामिनेशन में आपको कितना टाइम दिया जाता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे। ना 3 घंटे आपको दिए जाते हैं और 3 घंटे में आपको उतना बताना है जितना कि आपने 1 साल में पढ़ा है, मतलब पूरा का पूरा नहीं बताना है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज है सिर्फ आपसे वही पहुंची जाएगी, है ना। अंतिम परीक्षा का समय जो है उसमें तो उससे भी बहुत कम आपको टाइम दिया जाता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में वो आता है, बिल्कुल सेकंड्स होते हैं। उस समय आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, बस इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका रिजल्ट क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ डेथ आपने क्या सोचा, क्या कहा, किसको स्मरण किया, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपका अगला जीवन सेफ पैसा ही प्राप्त हो जाएगा। सारी जिंदगी कितना कमाया, क्या क्या किया आपने, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपकी हायर एजुकेशन के विषय में, आपकी सुंदरता के विषय में, आप कितना पार्लर जाते थे, आप कैसे वस्त्र पहनते थे, किस तरह से दिखते थे, कैसी कैसी डीपीस रखते थे, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपकी हाइट कितनी थी, आपका वेट कितना था, आप जॉगिंग करने जाते थे नहीं जाते थे, आपको स्विमिंग करना आता था नहीं आता था, दिस ऑल बिलोंग्स टू योर मटेरियल बॉडी। और इस भौतिक शरीर से रिलेटेड किसी भी वस्तु का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो तो क्योंकि ये भौतिक शरीर तो आप हो ही नहीं, तो फिर ये भौतिक शरीर के विषय में या उनके जो सुविधाएं आप प्राप्त करने के लिए जीवन गुजार रहे हो, तिजोरियां भरी रह जाएंगी, गाड़ियां सारी खड़ी रह जाएंगी, लेकिन उनके विषय में कुछ नहीं पूछा जाएगा। उस वक्त क्या पूछा जाएगा, वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है, भगवान बता रहे हैं, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसमें केवल स्मरण की बात हुई है कि उस समय आप क्या स्मरण कर रहे हो, उस समय आपकी बुद्धि में, आपके मन में क्या बात आती है। और ये एग्जामिनेशन ऐसा नहीं खाली अंत समय में ही होगा, इसमें भी मिड टर्म्स आते हैं, जैसे स्कूल में मिड टर्म्स आते हैं ना, बच्चों के असाइनमेंट्स होते हैं, तो जब जब जीवन में छोटे छोटे संकट आते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई दुख आ जाता है, तो उस समय हमें क्या याद आता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, एक बहुत बड़े पत्थर से आपका टकराव जाता है पांव और आप गिर जाते हो, उस समय आपके मुख से क्या निकलता है, क्या हे कृष्णा ऐसा निकला, या निकला ओ माँ पता नहीं किस नालायक ने यहाँ पर पत्थर रख दिया। तो जैसा संसार में छोटे बड़े दुख सुख तो सबके जीवन में आते हैं, तो उस समय क्या कि लोग कहते ओ माँ मम्मी ऐसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि माता वो व्यक्ति है जो कि हर दुख में हमें सहारा देती है। तो जब हमें हमारे मन में ऐसा लगता है कि माँ आके सहारा देगी, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम ऐसे अनुभव करेंगे कि जन्म जन्मांतर से हमें जो जो दुख प्राप्त हुआ है उससे भगवान ने हमारी सुरक्षा की है, भगवान हमें सहारा देते हैं, भगवान हमारे हृदय में मित्र बनकर बैठे हुए हैं, हर दुख सुख में वही तो हमारे वास्तविक सहारे हैं, वही तो हमारे प्रीतम है, हमारा सारा सब कुछ हमारा साथ छोड़ देता, हमारे रिश्तेदार, हमारे बंधु भाई, हमारे रिलेटिव्स, हमारा घर, हमारी कमाई हुई सारी जायदाद हमारा सब साथ हमारा छोड़ देते, फिर भी भगवान हमारे साथ रहते हैं। तभी जब हमें ये रियलाइज होने लगेगा कि भगवान हमारे कितने साथ हैं, कितना प्रेम करते हैं, तभी हमारे मुख से नाम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। हम देखते हैं जब भक्तों के ऊपर कोई संकट आता है, कुछ भी दुख हो रहा होता है, कभी मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी, तो जो कंपाउंडर है इंजेक्शन लगा रहा था और भक्त बोल रहा था कृष्णा 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 ऐसे बोल रहा था कृष्णा, तो ऐसा लग रहा था कि देखो कृष्णा को कितना छोटी सी तकलीफ में भी हम कृष्णा को याद करते हैं, तो जब दुख बढ़ा होगा तो उतना ही तीव्रता से कृष्ण याद आए। तो ये प्रैक्टिस भी हमें बहुत भाव से करनी है, यानी कि जब हमें ये प्रैक्टिस है ना कि हम कृष्ण का नाम याद करें, तो बहुत भाव से कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, जब कोई दुख आए परेशानी आए तो हमको खुद से अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए कि क्या मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मैं अपने अंतिम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन हो रही है मेरी। और अंतिम एग्जामिनेशन में एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि भगवान बताते यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि जिस जिस भाव को स्मरण करते हुए आप इस कलेवर को छोड़ते हो, तम तमे वायति कौनते सनातन भाव, आपको वैसा ही दूसरा शरीर प्राप्त होता है। ये कैसे है, जैसे आप फोटोग्राफर कोई आपका फोटो खींच रहा होता है, ठीक है, फोटोग्राफर फोटो लेने से पहले आपको क्या बोलता है कि आप पहले रेडी हो जाओ। आप रेडी होते हो, अपने बाल भी सेट करते हो, अपना फेस भी सेट करते हो, फिर अंत में आपको बोलता है स्माइल। स्माइल के साथ क्या करता है, बटन को दबाता है ना। वो स्माइल के बाद आपको कुछ और करने के लिए समय नहीं है, बस आपको खाली स्माइल ही करना है। लेकिन उस स्माइल के समय यदि आपने कोई एकदम बुरी चीज सोच ली या देख ली, आपके उस फोटोग्राफर के पीछे है वो, आपको पता नहीं कि क्या हो रहा है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन आपने जैसा आपके मन में विचार आया आपका ऐसा मुंह बन गया। समझो सामने से अगर आपका छोटा बच्चा आ रहा है और वो गिर गया है ना, आपको स्माइल हो गया और वो बटन दबा रहा है और वो अगर गिर गया तो आपका फेस कैसा बनेगा, स्माइल तो खत्म हो जाएगी, कंधा सा फेस बनेगा है ना। तो उस समय भले आपका जैसा भी फेस बना, उसमें फोटोग्राफर की कोई गलती नहीं, क्योंकि बटन तो दब गया। अब जब वो प्रिंट आउट होकर आपके सामने आएगा और आप गुस्सा करोगे कि ऐसा कैसा फोटो खींचा है, तो कसूर तो उसका नहीं है, क्योंकि आपके मन में विचार ऐसा था इसलिए आपकी शक्ल ऐसी बन गई थी। तो अंत समय में जैसी आपकी शक्ल होगी वैसा ही प्रिंट निकलेगा। भगवान के पास एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, लाखों, 84 लाख प्रिंट हैं। फिर भी हमको भगवान आपको अवसर देते हैं कि जैसा जैसा आपके माइंड में आता है आपको वैसा मिलेगा। तो फिर हम जब अंत समय में उस 84 लाख बटनों में, यानी 84 लाख प्रिंट में से कुछ भी स्मरण करते हैं, किसी से रिलेटेड कोई खाने को स्मरण करता है, कोई लड़की को स्मरण करता है। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आजकल है ना लड़कियों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और लड़कों की कम हो रही है, तो ये जनरल रूल है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ना वो मरते समय लड़कियों के विषय में सोच रहे होते तो दूसरे समय में लड़की बन के आ जाते हैं। मतलब जिस जिस तरह की चेतना होगी, जैसा जैसा आप विचार कर रहे होगे, वैसे वैसे ही आपको दूसरा जन्म मिलेगा। तो अब इसके ऊपर विचार करना है कि इस परीक्षा में पास होने के लिए क्या अभ्यास कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन को कहीं ऐसा ही वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। हम किसी के विषय में किसके विषय में सदैव सोचते हैं, क्या हम सारी जिंदगी कर रहे होते हैं, तो वही हमें अंत समय में विचार आएगा। तो ये बात बहुत ही सिंसियरली और सीरियसली अपने आप से पूछनी है कि क्या हम अंतिम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हैं, आर वी प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। देखो हर एग्जाम के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है, और कोचिंग किससे लेते हैं, जिसने पहले से इस एग्जाम की तैयारी की है। अगर उस फाइनल एग्जाम में फेल हो गए तो पूरा जीवन बेकार हो जाएगा है ना। अगर आपने एग्जाम में पास नहीं किया तो फिर वापस से आपको शुरू से जीना पड़ेगा। जैसे कभी ऐसा होता है ना, बच्चे अगर पूरा साल पढ़ते नहीं है, अंत समय साल के अंत में जब उसका एग्जाम होता है और उसको क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते तो दोबारा से उसी क्लास में उसको भेजा जाता है ना। तो फिर अगर हमने अपने जीवन में प्रिपेयर नहीं किया लास्ट एग्जामिनेशन के लिए तो हम भी फेल हो जाएंगे और पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। जैसे ये बात पहले समझनी है, भगवान ने श्लोक में बताया है कि आपको क्या करना है, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। सारा जीवन तुम्हें इस एग्जाम ने पास होने के लिए प्रिपरेशन करनी है, यानी कि ये जो भौतिक जगत में आपको भेजा गया है, मनुष्य योनि में आपको गुरु दिया, यानी गुरु एज अ टीचर दिया, और शास्त्र एज अ भगवद गीता और भागवतम दिया। तो आपको सारी जिंदगी इसकी तैयारी करनी है, इसको प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकली भी इसमें से करना है और आपको थ्योरी भी इसी की लेनी है, जो जो इसमें लिखा हुआ है। तो फिर अब एग्जाम में कोचिंग किससे लेनी है, जिसने पहले से इसकी तैयारी की है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा संसार में कि माता पिता कुछ बच्चों को कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो कॉलेज में पढ़ते नहीं है, वो निकलते हैं घर से कॉलेज के लिए, लेकिन होटल में चले जाते हैं, सिनेमा में चले जाते हैं, मूवी देखते हैं, क्लब में जाते हैं और लड़कियों के साथ घूमते हैं, लेकिन वो वास्तव में पढ़ाई नहीं करते ना, स्टडी नहीं करते हैं। तो फिर वो क्या होता है, अंत समय में जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, जब एग्जाम होता है तो उसको कुछ आता नहीं, रिजल्ट आता है तो फिर वो फेल हो जाते हैं। अगर गौर से देखें तो हम सबका यही हाल है ना, ये भौतिक जगत इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम सब यहाँ पर इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने इस शरीर को खुश कर सकें, इस भौतिक इंद्रियों को प्रसन्न कर सकें, कैसे इंद्रिय तृप्ति कर दें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 33 में कहते हैं, एवं प्राप्य भजस्व माम, ये भौतिक जगत तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम इसको प्राप्त करके मेरा भजन करो, एंजॉयमेंट तो परीक्षा में सफल होने के बाद किया जाता है ना। अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, हमारे बच्चे के एग्जाम्स होने वाले होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, देखो एग्जाम्स से पहले आपको क्या करना, टीवी भी नहीं देखना, कंप्यूटर भी नहीं बैठना, गेम भी नहीं देखना, बस एक बार एग्जाम्स हो जाए फिर आपकी मर्जी आप जो भी करो, ऐसे बोलते ना। तो उसी तरह से हम इस संसार में आए हैं, हमें भी फाइनल एग्जामिनेशन देना है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय 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 इस भौतिक जगत में जो कि दुखों का घर है, वहां पर एंजॉयमेंट के लिए केवल कोशिश करते रहते हैं। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हम सब कई जन्मों से बार बार फेल हो रहे हैं, है ना। आज हम इस संसार में हैं, इसका कारण यही है कि हम फेल हो गए हैं, तभी तो इस भौतिक जगत में। जब हम फेल हो जाते हैं तो फिर इस भौतिक जगत में वापस भेज दिए जाते हैं, पुनः पुनः वही सर्कल घूम रहा है। थक क्यों नहीं रहे हम? हम अपनी आत्मा को इतना कष्ट दे रहे हैं, ये आत्मा जो कि कृष्ण का अंश है, केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति से ही प्रसन्न हो सकती है, इसको संतुष्टि केवल कृष्ण के धाम को प्राप्त करके हो सकती है। तो उस चिन्मय आत्मा को हम कभी कुत्ते के, कभी बिल्ली के, कभी गटर के कीड़े के अंदर रहने पर मजबूर कर रहे हैं। भगवान हमारे सुहृद हैं, वो हमें इन कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि बस करो, मत आसक्ति रखो किसी भी भौतिक वस्तु और व्यक्ति से। तुम तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तुम केवल अपना कर्तव्य करो, अपना युद्ध करो, लेकिन सिमरन केवल और केवल मेरा करो, मुझे स्मरण करो, सिर्फ मेरा। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो, केवल मेरा स्मरण करते हुए तुम अपना कार्य करो। हम क्या करते हैं, हम हर समय कार्य करते हैं और भौतिक वस्तुओं का ही स्मरण करते हैं। अगर किसी को थोड़ा डर लग भी जाता है कि पता नहीं अंत में क्या होगा, तो आज का मनुष्य तो इतना गिर गया है कि उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए भी सोर्स का उपयोग करना चाहता है कि चलो कोई साधु संत को अपना गुरु बना लेते हैं और मैं तो फिर अपने वही जानवरों जैसे कार्य करता रहूंगा, लेकिन गुरु से दीक्षा लेकर, किसी भौतिक संसारिक तथाकथित गुरु से दीक्षा लेकर मैं अपने वही काले धंधे शुरू करूंगा और गुरु भुगतता रहेगा, सारा बार गुरु के ऊपर थोप देते हैं। ये एक दूसरी टेक्निक शुरू हो गई यहाँ पर संसार में। वो कहते हैं कि हमें तो परीक्षा में दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा आदमी है ना एग्जामिनर, वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में है, हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मूर्ख है वो, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि जो गुरु आपको ये शिक्षा देता है कि आपको साधना की आवश्यकता नहीं, बस आपने गुरु बना लिया ये काफी है, आपको साधना की आवश्यकता नहीं, ऐसा गुरु तो स्वयं भी फेल हो जाएगा, तो वो भला आपको कैसा पास कराएगा। गुरु को आचार्य होना चाहिए, वो जो बोले उसे स्वयं आचरण करना चाहिए और अपने शिष्यों को एज इट इज सिखाना चाहिए। अंत समय के फाइनल एग्जामिनेशन के लिए अपने शिष्य को प्रिपेयर करना चाहिए। एक बात सदैव याद रखिए, गुरु सोर्स नहीं है, गुरु तो टीचर है जो आपको तैयारी कराएगा। हमने गुरु को सोर्स समझ के रखा है, कि वो हमको पास करा देगा। अगर गुरु सच्चा होगा ना तो उस समय खड़ा होकर कहेगा कि सुनो धर्मराज, इसको पास मत करना, ये मेरा नालायक स्टूडेंट है, इसने बिल्कुल भी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं की, इसने तो मेरा नाम बर्बाद कर दिया। और गुरु भगवान का भक्त होता है, वो कभी गलत काम ना खुद करता है और ना ही कभी आपसे करवा सकता है, इसे गुरु को यूज करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इस भौतिक जगत में जब हमारे छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशन होते हैं तो कितना खर्चा करते हैं हम उन एग्जामिनेशन में, उनको पास कराने के लिए अच्छे से अच्छे ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं और अच्छे से अच्छे स्कूल्स में उनको बिठाते हैं। तो इस भौतिक जगत में अगर वो पास नहीं हुआ तो उनका केवल एक साल बिगड़ता है, लेकिन यदि हम अपने इस फाइनल एग्जामिनेशन में पास नहीं हुए तो हमारा पूरा जीवन, पूरा जन्म बिगड़ जाएगा। तो हमें सदैव उस आध्यात्मिक परीक्षा की प्रैक्टिस प्रिपेयर करना है, उसकी तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन से डर केवल उन्हीं को लगता है जिसने पूरी जिंदगी तैयारी नहीं की है। तैयारी को करने की चिंता भी नहीं की, बल्कि तैयारी भी नहीं की, केवल उनको चिंता भी नहीं है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आवश्यक है। अब देखो स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए पहले ही शेड्यूल दिया जाता है कि भाई आपके एग्जाम्स जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट होंगे और उसके बाद है ना 6 दिन के बाद खत्म होंगे, लेकिन अंतिम एग्जामिनेशन की तो कोई डेट भी फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकते हैं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, आज अभी इसी वक्त कभी भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए प्रिपरेशन कितनी आवश्यक है, और ये नहीं सोच सकते कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके बाद में करूंगी, नहीं, ये गलत बात है, ये धोखा है अपने आप को। सब लोग ये कहते हैं बस ये एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे फिर जब करना शुरू करूंगा, ये खत्म हो जाएगा फिर जब करना, मेरे घर में शादी है वो खत्म हो जाए, मेहमान आए हुए हैं वो हो जाए, बच्चे छोटे बड़े हो जाए, ये सब केवल अपने आप को झांसा देने वाली बात है। केवल ये माया है जो कि हमें भरमा रही है कि ये काम हो जाएगा तो तुम रिलैक्स हो जाओगे फिर तुम भक्ति करो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस भौतिक जगत में आप रिलैक्स हो जाओ। इस संसार में जब तक आप जियोगे तब तक ऐसे ही सर्कमटेंसेस रहेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होंगी, परेशानियां होंगी, और इसी के अंदर भगवान ने कहा, इसीलिए तस्मात सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युद्ध च, युद्ध करना है इस भौतिक जगत में प्रत्येक क्षण में, और साथ साथ में भगवान को स्मरण करना है, यही तैयारी है। और इस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तु है केवल हमारी सिंसियरिटी और हमारी सीरियसनेस ही हमें इस एग्जामिनेशन में सफल करा सकती है। और पता है कि इस एग्जाम्स का एग्जामिनर कौन है, जानते हैं आप उसको? नाम लेते ही भय हो जाता है, उसका नाम है यमराज, और हम सब के साथ उसका एक एक सीक्रेट एजेंट जो है वो सदैव हमारे साथ रहता है, और उसका नाम जानते हो क्या है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पता है क्या होता है? चित्र का मतलब होता है फोटोग्राफ और गुप्त का मतलब होता है सीक्रेट, यानी सीक्रेट फोटोग्राफर है वो, और वो आपके जीवन की पूरी रील बना रहा है कि किस किस समय पर आपने क्या क्या करतूत किए हैं, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है, कि वो साफ साफ बताएगा जब हम जाएंगे ऊपर। तो हमने जो जो संसार में किया है उसकी तो पूरी फोटो की प्रिंट होगी, और साथ साथ में जो हमने सोचा है ना उसके भी वेव्स दिखाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसा कैमरा है जो हमारी सोच को भी रिकॉर्ड करता है, सारा एक्शन रिप्ले के साथ हमें दिखाएगा। लेकिन डरो मत, तैयारी करो और उत्साह के साथ तैयारी करो कि हमें इस बार अवश्य पास होना है, इस बार हम पुनः इस भौतिक जगत में वापस फेल होकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें परफेक्शन अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमें परफेक्ट मार्गदर्शन प्राप्त है इस बार। श्रील प्रभुपाद इज एक्चुअली ओपन अ बिग यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाइड। श्रीला प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खोला है और कोचिंग का, जिसमें 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। तैयारी कीजिए, आइए। सक्सेस गारंटीड, जॉब सिक्योरिटी, 100% प्लेसमेंट। यदि इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट बन के सीरियसली हम तैयारी करेंगे तो सफलता निश्चित है और वास्तविक गति यानी कृष्ण प्राप्ति हमें अवश्य होगी। तो यहाँ पर 100% रिजल्ट है और रिजल्ट में 100% सफलता निश्चित है, परंतु जब तक सांस चल रही है तब तक हमें प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वास्तव में एप्लीकेशन है जो हमें रोज 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 बार 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 देनी है, हर रोज 1, 7 to 8, हर रोज 16 बार भगवान की माला का जप करना है, 16 माला जप करनी है। और उसमें भगवान को क्या कहना है कि कृपया मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए, मुझे आपकी सेवा में, इस भौतिक थक गया हूँ मैं भौतिक जगत की सेवा करते करते। और इस मंत्र का अर्थ यही है कि कृष्ण हमें अपनी सेवा में ले लो। परंतु ये बहुत ही इंटेलिजेंट मंत्र है, जैसे अगर किसी को जॉब चाहिए होती है तो वो बॉस के पास जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप आए हो इंटरव्यू दे रहे हो तो बॉस आपको नौकरी दे। परंतु उस बॉस का कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है तो क्या करता है, जिस बॉस जो से हमें नौकरी चाहिए उसकी किसी बहुत ही प्रिय जो जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी बात नहीं टाल सकता, यदि उससे पहले रिक्वेस्ट करे कि आप उसको बॉस को ना रिक्वेस्ट करो मेरे लिए सिफारिश लेके जाए, तो अवश्य उसका काम बनेगा। तो यदि सिफारिश होगी तो काम हो गया, समझो उसकी नौकरी पक्की। तो जो हरे हम बोलते ना, हरे कृष्णा, तो हरे इस उस बॉस की भी बॉस है। हरे माना हरि के मन को हरण करने वाली। तो जिसने इस यानी हरे यानी श्रीमती राधा रानी के पास जाके एप्लीकेशन दी है तो समझो उसका तो बेड़ा ही पार हो गया। तो ये एप्लीकेशन इतनी परफेक्ट है और ये इंस्टीट्यूट इतना वेल इतना परफेक्ट है, ये सनातन काल से चलता आ रहा है। 1 साल 2 साल 500 साल 1000 साल नहीं, ये सनातन काल से चला आ रहा है। 500 साल पहले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसको पुनः श्रीमद् भगवद गीता के रूप में एस्टेब्लिश किया है। हजारों व्यक्ति इस प्रोसेस में अपने एग्जाम की तैयारी करते हुए सफल होते आए हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या है जानते हो? नो एडमिशन फीस। इसमें आपको एडमिशन के लिए फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस कोचिंग सेंटर की कोई फी नहीं है, नो एंट्री फी, कुछ भी आपको देना नहीं है। इसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि जो टीचर्स यहाँ पर आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उस एग्जाम के लिए आपको तैयार करते हैं, उनको एक जबरदस्त ऑफर है, क्रेडिट है उनको, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 69, भगवान कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में जो ये इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यते, जो मेरे भक्तों को इस परम गुह्य ज्ञान को सिखाता है, यानी जो मेरे भक्तों को प्रिपरेशन में हेल्प कराता है, जो कोच करता है, जो उनको पढ़ाता है, जो उनको सिखाता है, श्रीमद् भगवद गीता में के विषय में भगवान कहते हैं कि वो भक्तिमयी पराम कृत्वा, वो सबसे परम भक्ति करता है और वो मुझे प्राप्त करेगा, मामे वैश्यस्य संशय। और उससे भगवान कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमा, उससे अधिक प्यारा तो मेरा और कोई है, भविता न च मे तस्मात् अन्यत प्रियतरो भुवि, और ना ही कभी भविष्य में उससे ज्यादा प्यारा मेरा कोई होगा। बस इस एक श्लोक को देखकर हजारों भक्त श्रीमद् भगवद गीता को बगैर किसी फीके संसार में सिखा रहे हैं और आप सबको हम जैसे पतित जीवों को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देकर इस अंतिम एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में स्कूल खोल रहे हैं। आइए मुफ्त में फ्री एजुकेशन प्राप्त कीजिए और पास होने की तैयारी कीजिए। सफलता गारंटीड है और सदैव उसमें क्या करना है, केवल भक्तों के संग रहकर कथा को श्रवण करना है और पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रिपरेशन है और यदि हम ऐसे करते रहेंगे तो भगवान ने कहा कि आप यदि ऐसे करते रहोगे तो मुझे याद कर सकोगे। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत में मुझे स्मरण करने के लिए क्या करना है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सदैव मुझे याद करना है। और सदैव मुझे याद करने के लिए क्या करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को श्रवण करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।